युद्ध की हिंसा में स्पोर्ट्समैनशिप है जो क्रांति की हिंसा में नहीं रहती। कुश्ती में बराबरी का आदमी होना चाहिए ना, ये मारपीट में कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े को भी मार सकते हैं, बच्चे को भी मार सकते हैं। तो लोगों ने यह जो माना है कि सशस्त्र प्रतिकार हिंसा है वो गलत चीज है, कुछ साफ हमारा दिमाग होना चाहिए। युद्ध और हिंसा में आज का जमाना केवल हिंसा का है, युद्ध का नहीं है। तो वर्ग युद्ध शब्द आते ही हिंसक हो या अहिंसक हो ये गलत चीज है, इसमें दया नहीं रहेगी जरा भी, केवल हिंसा रहेगी। तो दोनों का डिजेनरेशन होगा, क्रांतिकारी भी क्रूर बन जाएगा, वो शूर नहीं बनेगा, यानी सांस्कृतिक हानि है इसमें। इसलिए गांधी एक चीज नया आयाम एक गांधी लाया, और तो उसने ये कहा कि क्रांति की प्रक्रिया में ही कुछ ऐसा हो कि मनुष्य मनुष्य के नजदीक आए, फ्लैश लैटरिंग तो हो, लेकिन उनको लाने से पहले ब्राह्मण के हाथ में झाड़ू हो और शूद्र अछूत के हाथ में वेद हो। ये प्रक्रिया में ही एक के बाद एक क्रांति नहीं, स्टेजेस होंगे, लेकिन सारे स्टेजेस साथ साथ चलें। ये चीज हमारी समझ में आ जानी चाहिए। तो उनको मैं समझता हूं कि केवल वो अछूत हैं, इस नाते भी उनको कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए। उनके बारे में हमको ये विचार नहीं करना चाहिए कि किसकी किसका आर्थिक स्टेटस क्या है, क्योंकि उनकी सोशल डिसेबिलिटी अब तक कायम है। और दूसरी चीज जो उनके बारे में सोचनी चाहिए वो ये सोचनी चाहिए कि उन्होंने इतने वर्षों तक डिप्रेशन सहा है, लोगों ने उनको इतने वर्षों तक दबाया है, और ये धर्म और ईश्वर के नाम पर दबाया है। तो इस मानसिक गुलामी से भी उनको उबारना होगा। धर्म ने बहुत कुछ किया होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मनुष्यों को गुलाम बनाया, हीनवाद बनाया, ईश्वर को डिक्टेटर बनाकर। तो ऐसा ईश्वर कैसे होगा जो आदमियों को जन्म से ही इस तरह से गुलाम बना देगा। ये चीज उनके दिमाग में आनी चाहिए अच्छी तरह से कि हिंसा से उनका भी पतन होगा। ये केवल जो व्यावहारिक लोग कहते हैं कि वो उनकी संख्या थोड़ी है, इनकी ज्यादा है, इनकी तलवार के सामने उनकी तलवार नहीं ठहरेगी, ये तो बिल्कुल एक वास्तविकता है। मैं केवल वास्तविकता की बात नहीं कह रहा हूं। क्या हो गया, क्रांति के बाद जिनकी सत्ता होगी उनकी कुछ संस्कृति होगी कि नहीं? क्रांति के बाद समाज जिनके हाथ में जाएगा वो किस तरह के लोग होंगे? तो उनको यह समझाने की जरूरत बहुत मैं मानता हूं। इसलिए उनके लिए जो रिजर्वेशन किया जाता है उसको मैं अपोज नहीं करता। एक और इसका पहलू है जिसको हमको सोच रहे हैं कि हमको अंतिम चीजें सोचनी चाहिए। जो नेता है या जो सरकार है वो अंतिम चीजों को नहीं सोचेंगे आज, क्योंकि उनको तो परिस्थिति संभाल लेनी है और आप लोगों को क्रांति करनी है। कोई सरकार क्रांति नहीं करना चाहेगी क्योंकि उस इस एस्टेब्लिशमेंट में ही वो रह सकती है, इससे बाहर नहीं रह सकती। तो ये एक चीज इनके बारे में सोचनी होगी। दूसरी ये सोचनी होगी कि सरकारी नौकरों का परिमाण कम होना चाहिए। नेशन में सरकारी नौकर कम से कम होने चाहिए। टॉप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। तो हम क्या पीपल को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बनाना चाहते हैं? ये उन लोगों को सोचना है जो क्रांति को समझे हैं, जो दावा करते हैं कि हम प्रगतिशील हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। उनका काम है ये कि क्या हम सारे समाज को सरकारी नौकरों का समाज बनाना चाहते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं और ज्यादा लोग गैर सरकारी रहे, हम कहते हैं ना कि सरकार की का खर्च कम होना चाहिए। तुमको मालूम है ना पार्किंसंस लॉ एक है, आदमी जितने अधिक होते हैं काम उतना कम होता है, क्योंकि सब एक दूसरे पर टालते रहते हैं। तो पार्किंसन नाम का एक अच्छा लेखक है, उसका उसकी ये किताब है पार्किंसंस लॉ उसे कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आदमी कम होने चाहिए। आज क्या होता है कि प्रेशर ग्रुप्स होते हैं तो 300 में से 30 मिनिस्टर हो जाते हैं, यानी 10 में एक आदमी मिनिस्टर हो गया। तो अब तो बिहार में ये हालत होगी कि रास्ते में पत्थर मारो तो किसी मिनिस्टर को लग ही जाएगा। ये तो अच्छी स्थिति नहीं है ना। सभी बारी बारी से राजा हो जाएं, ये सोल्यूशन नहीं है। जो हम चाहते हैं वो तो स्टेटिज्म को कम करना चाहते हैं। इसलिए इसका सच्चा सोल्यूशन यह है कि जो ऊपर की जातियां हैं उनको सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कर देना चाहिए। ये इसका असली सोल्यूशन है, नहीं तो उन पर वो नौबत आने वाली है। अब महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में कोई ब्राह्मण बहुत है नहीं, जो है उनके हाथ में पावर नहीं है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये रिजर्वेशन के कारण सत्ता जाएगी उनको इन लोगों की आवश्यकता मालूम होगी, क्योंकि इनकी अक्ल का फायदा तो लेना ही है ना, वो किसके भरोसे चलाएंगे। तो शिक्षण का क्षेत्र है, न्याय का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इन लोगों की आवश्यकता उनको मालूम होगी। और इस तरह के से इनके हाथ में पॉलिटिकल पावर तो नहीं रहेगी लेकिन रियल पावर रहेगी समाज में। ये अपने विचार से अपनी प्रेरणा से त्याग करेंगे तो, नहीं तो ये भगाए जाएंगे और तो सत्ता भी जाएगी और शक्ति भी जाएगी। अपनी इच्छा से जो त्याग होता है उसमें से शक्ति आती है, मिलती है, सत्ता भले ही न मिले। लेकिन जो जबरदस्ती से का त्याग होता है उसमें से दोनों जाते हैं। तो क्या ये बिहार के उच्च जातीय लोग सोच सकते हैं? अगर वो पुरानी पीढ़ी नहीं सोच सकती तो नई पीढ़ी को ये सोचना चाहिए। कि नौकर कम से कम हो सरकार के और राज्य छा न जाए समाज पर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि शिक्षण में क्रांति कोई चाहता नहीं है। तीसरी चीज है, इन लोगों को अंग्रेजों के आने से पहले कभी शिक्षण नहीं मिला है। ये सब अंग्रेजों के एक तरह से कृतज्ञ है। अंग्रेज नहीं आता तो इस देश के उच्च वर्णीय इनको शिक्षण नहीं मिलने देते। अब आप क्या चाहते हैं कि भंगी भंगी बना रहे, तेली तेली बना रहे, लोहार लोहार बना रहे? इस दिशा में क्या आप शिक्षण को ले जाना चाहते हैं? जिनको आज तक शिक्षण नहीं मिला वो चमहार, वो भंगी, वो सब बाबू बनना चाहते हैं। आप लोग सब बाबू बन गए। वो कहते हैं कि शिक्षण में परिवर्तन करो और हमको जौ कहते हैं रखना चाहते हैं, तेली तेली रहे, लोहार लोहार रहे, बढ़ई बढ़ई रहे, इस तरह का समाज आप बनाना चाहते हैं। उनके चित्त में विद्रोह पैदा होता है। राजा जी के पैरों पड़कर राजा जी को मुख्यमंत्री बनाया तमिलनाडु का। जब उन्होंने ये बात कही कि दो घंटे शिक्षण हो बौद्धिक और बाकी का सब औद्योगिक शिक्षण हो, ग्राम उद्योगों का, बढ़ईगिरी लोहारगिरी, तो उन लोगों ने राजा जी को निकाल दिया कि यह ब्राह्मण है, यह खुद तो बन गया जो कुछ बनना चाहिए था, अब हमको वही गंवार रखना चाहता है। तो जिन लोगों को कभी शिक्षण नहीं मिला उनको यही शिक्षण चाहिए जो हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि शिक्षण में क्रांति चाहिए, उनको इस शिक्षण का बहिष्कार करना चाहिए। वो हड़ताल करेंगे लेकिन बहिष्कार नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि वो शिक्षण में केवल सुधार चाहते हैं और सुधार इतना ही चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा उसमें रहे, हमारा स्थान रहे। तो यह भी हमको समझना चाहिए। उन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं को समझ कर ये करना होगा। इसलिए इस रिजर्वेशन के विरोध को मैं समझ नहीं सका हूं। इस विरोध में से कोई शक्ति उच्च वर्णियों को मिलने वाली नहीं। आज भले ही कर थोड़ी देर दिनों के लिए वो जीत जाए, इससे अधिक से अधिक इतना हो सकता है कि उच्च वर्णियों में जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो उनको दीजिए कुछ, उनको कंसेशन दीजिए। लेकिन आर्थिक स्थिति जिनकी खराब हो उन्हीं पिछड़े वर्गों को हम देंगे सुविधाएं, ये चीज मुझे अभी जचती नहीं। आज जो लड़ाई है एलिट्स की लड़ाई है, अछूत और पिछड़े हुए वर्गों में एलिट आ गए हैं ना, जो पढ़े लिखे हैं, जैसे जगजीवन बाबू हैं, अंबेडकर थे, तो एक एलीट वो हो गए। और ये जो उच्च वर्णीय है इनमें भी एलीट हैं। अभी इन दो एलीटों का झगड़ा है असल में। दोनों में जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो संपन्न लोग हैं उनका ये झगड़ा है। रैशनैलिटी में हमारे महाराष्ट्र में एक बड़े रैशनलिस्ट हो गए सनातनी, गोम जोशी। उन्होंने कहा कि ये अछूत जितने हैं ये तो कैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं? जो ह्यूमन बीइंग्स अच्छे नहीं हैं, सिलेक्शन अगर करो तो ये ह्यूमन बीइंग्स जीने लायक नहीं है। इसलिए ऐसा करो कि इनका सबका कैस्ट्रेशन कर डालो। कुछ दिनों में यह जाति समाप्त हो जाएगी, फिर सिलेक्ट रहेंगे जैसे लोग दुनिया में रहने चाहिए वो रहेंगे। ऐसा सिलेक्ट के ब्रीडिंग करो, ये रैशनल है। लेकिन उसको भी हम, जितना अधिकार हमको जीने का है उतना ही उसको है, इसके लिए कोई रैशनल नहीं है। लेकिन ये ह्यूमन इमोशन है जिसमें से सारा कल्चर आता है। तो रैशनैलिटी के 18th और 19th सेंचुरी के बाद रैशनैलिटी से परे जा रहा है रिवॉल्यूशन दुनिया में, सारी क्रांति। तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिए, उदाहरण तो पूरा नहीं हो सकता है। मैं अगर कहूं कि शिवाजी सिंह की तरह था तो अब हम उसके आयाल और चार पांव देखने लगे तो मैं क्या करूंगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ रैशनैलिटी नहीं होती है, फ्रीडम इमोशन है। जितनी आवश्यकता है उतनी इमोशन है। इसलिए इंदिरा जी जब कहती हैं या दूसरे लोग मुझसे कहते हैं कि ये जो भूखे लोग हैं इनको कोई कदर नहीं है फ्रीडम की, उनको कदर नहीं होगी, तुमको तो है ना। तो जिसकी कदर तुमको है वो उनको दो, वो कॉन्शियस नहीं होंगे। स्वराज्य के वक्त अंग्रेजी राज पर प्रेम करने वाली जनता थी, यह गलत है, गुलामी गलत है, ये तो सिखाना पड़ेगा ना रिवोल्यूशनरी को। जो फ्रीडम की आकांक्षा नहीं है उसको जगानी पड़ेगी। लेकिन वो सुप्त है, उसको जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि मैं अपनी इच्छा से नहीं जी सकता हूँ, उस दिन वो रिवोल्ट करेगा, जैसा अभी 1977 में किया उसने मार्च में। लेकिन तब तक वो गाफिल ही था, तो उसको गाफिल क्यों रहने देंगे? ह्यूमन डिग्निटी तक उसको लाना है कि नहीं? ह्यूमन डिग्निटी तक क्यों लाओ? कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारी तरह वो जिए, जैसे हम जीते हैं वैसे वो जिए हम चाहते हैं। इस चाहने के पीछे तुम्हारा क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, हमारा स्वभाव है। एक कुत्ता मोटर के नीचे जी मर गया, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि लगता है, इसका मैं क्या कारण बताऊं? लेकिन तुम कहोगे कि नहीं, वो कुत्ता तो ऐसा था, पागल हो गया था, काटता था, तुम्हारे भी बच्चे को काटा है, अच्छा हुआ मर गया। वो अलग चीज है। मनुष्य को अब प्रेम के लिए कारण चाहिए, प्रेम के लिए कारण नहीं चाहिए। तो स्वभाव की मेरी परिभाषा लिख लीजिए, जिसके लिए कारण चाहिए वो स्वभाव नहीं, जो अकारण है वो स्वभाव।
भगवान जाना नहीं जाता, माना जाता है, तो हिसाब से आजकल काफी भगवान निकल रहे हैं, अंदर में है कहीं महाराष्ट्र में।
हाँ, तो मान ही गए हैं,
सत्यनाथ साई बाबा के नाम से कहा जाता है, गुरु कहते हैं भगवान है, तो काफी लोग मानते हैं, और उसको रिवॉल्यूशनरी या रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को उसको मतलब सबको मालूम है तो गलत है, सब जानते हैं, मतलब जो कसौटी पे दिया जाए तो गलत है, तो होंगे भगवान पीछे जो देखे हो उसको छोड़ दीजिए। आज जो है अपने साथ में जो जी रहे हैं वो तो मानव ही है, और जो खुद को भगवान के नाम से जो लोगों को धोखा देते हैं उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं?
क्यों करें? अभी भूख देखो ना लोगों की, मर रहे हैं उनको पहले देखो ना।
सुपरस्टिशंस में
कौन जाता है उनके पीछे? पढ़े लिखे धनवान लोग ही जाते हैं ना,
मासेस भी जाते हैं।
कौन सी जाती हैं? मासेस तो सिर्फ इसके लिए जाते हैं कि कुछ मिल जाएगा उससे। संतोषी माँ वगैरह का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ये दो जो मैंने दिया था, मैं भी जाता हूँ सत्य साई महाराज के पास, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप कुछ चीजें पैदा कर सकते हैं तो हमारे लिए अन्न पैदा कीजिए, तो हम खेती वेती की जरूरत नहीं रही, कोई पंचवार्षिक योजना नहीं, दस वार्षिक योजना नहीं। हाथ हिलाया गेहूं हो गया, हिलाया इधर जलेबी आ गई, बस इससे ज्यादा क्या था। ये अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये मासिस उनके साथ बहुत दिन नहीं रहेंगे। मित्रों, इन सब का संबंध परलोक से है, ये लोक से नहीं है, इसलिए इससे बहुत घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतने लोग साधु संत होते हुए भी देश गुलाम रहा, ये लोग देखते नहीं है, वो समझते हैं इस चीज को, वो आजादी के लिए थोड़े उनके पास जाते हैं। स्वर्ग में कुछ हमको मिल जाए या दूसरे जन्म में मिल जाए तो उनको जाने दो ना, स्वर्ग में दूसरे जन्म में करने दो जो करना है। तुम इस जन्म की बात सोचो
दादा, तो ये चीजें रहेंगी तब तक वो इस जन्म के बारे में कैसे सोचेंगे। पंढरपुर की यात्रा के लिए जाने के लिए वो अपने पास के बर्तन रख देता है, तो उसे यदि समझाया जाए कि भाई ये जो पंढरपुर को जा रहा है ये गलत है,
वो बर्तन पहले लाता है ना रखने के लिए,
दूसरा और भी कुछ कर लेता है,
क्या करता है, चोरी
करेगा ना,
चोरी करेगा ना, यानी उसको भुगतना पड़ेगा यह लोक में। वो ये तो मानेगा कि नहीं, किसी दिन की ये उसको दे नहीं सकते हैं। खेती करना छोड़ा है क्या उसने इसके लिए?
उसके 10-15 दिन तो चले जाते
हैं उसी में, चले गए लेकिन खेती करना तो नहीं छोड़ा। और जो साधु इतना उसको देता है उसके पास ये अपने अपनी दक्षिणा क्यों लेकर जाता है?
जनता पार्टी के साथ जगह जगह जो युवक लोग हैं कुछ कुछ काम करते हैं, कुछ प्रशासन के भ्रष्टाचार को लेकर के या बाजार में राशन की दुकान है या होर्डिंग के खिलाफ, तो हर स्तर पर प्रशासकों से संघर्ष की स्थिति बनती है। ऐसा लगता है कि या तो हम उसमें ना पढ़ें, और अगर पढ़ेंगे तो इनके साथ झगड़ा होगा और वो फिर बात उस प्रशासन के स्तर से ऊपर के स्तर तक जाएगी। कोई MLA जुड़ा हुआ है, कोई मंत्री जुड़ा हुआ है, यदि कानून की कोई हेल्प भी नहीं मिलती तो आज रुख है पार्टी की सरकार का, एफिशिएंसी ही नहीं। वैसे मैं
ऐसा है, मैं सिर्फ बेसिक चीजें बता सकता हूँ। मेरे पास ये जो तुम्हारे डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं इनके इनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जो काम मैं नहीं करता हूँ और जो मैंने किया नहीं है वो उसमें मैं अपनी अकल बघारूँ तो तुमको धोखा दूँ। इसमें बेसिक चीज ये है जिसको हमें मान जान लेना चाहिए कि अब क्या सरकारें बदलने से रिवॉल्यूशन होगा होगी? जनता पार्टी थोड़ी देर के लिए मान लो कि तंग आ गई, या तो डर कर या तंग आकर राज छोड़ देती है, तो हम क्या करते हैं? ये जितने आंदोलन सरकार विरोधी हो गए उनका एक ही तो नतीजा हो सकता है ना, कि जो आज राज्य है वो राज न रहे, जैसे इंदिरा जी का नहीं रहा, जनता पार्टी का नहीं रहा, फिर एक पार्टी आ गई। तो वो जो राममूर्ति जी उस दिन कह रहे थे कि केवल राज्य परिवर्तन की हद आ गई है, अब केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं होगा, ये बेसिक चीज है। इसलिए जहां शक्ति चाहिए वहां शक्ति कैसे जागे, इस तरफ ध्यान हमको देना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि केवल अंतर जातीय विवाह से जाति नहीं जाएगी, सजातीय विवाह बंद करने पड़ेंगे तब जाति जाएगी। सजातीय विवाह भी रहे और अंतर जातीय भी रहे तो जाति नहीं जाएगी। उस तरह से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जनता की शक्ति जब तक नहीं जागेगी तब तक लोगों के हित का राज होगा नहीं। अब वो शक्ति जनता में यानी लोकतंत्र में जनता की वोट में है, जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं बराबर 50 साल से ये चीज कह रहा हूं कि जो वोटर है उसका लोकतंत्र होना चाहिए, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि सरकार से लड़ना आसान है, वोट खरीदने वाले और छीनने वाले से लड़ना आसान नहीं। सरकार की हिंसा ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज हिंसा का मतलब है नियमित, नियम के अनुसार चलने वाली। और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड हिंसा है इसका कोई भरोसा नहीं, इसका मुकाबला हमको किस जगह और कैसे करना पड़ेगा हमको पता नहीं, तो वहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें दिलचस्पी कम है, उसमें मार्टिरडम नहीं मिलेगा। सरकार की गोली से जो मरेंगे वो हुतात्मा हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन वहाँ वोट को बेचा जाना और छीने जाने से रोकने के लिए जो जाएगा वो अगर मर गया तो शहीद तो होगा ही नहीं। तो उसमें इंसेंटिव नहीं, लेकिन वो जगह है जहां से इसको हम रोक सकते हैं। वो जो डेमोक्रेसी में लास्ट मैन है उसको हमने अप्रोच नहीं किया पॉलिटिकली। ये पॉलिटिक्स है, ये वास्तविक राजनीति है। वो ऊपर की जो राजनीति है सत्ता की, वो राजनीति तो है नहीं। तो ये जो रियल पॉलिटिक्स है इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, इसलिए प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, रेवोल्यूशनरी ग्रुप नहीं बनते। विद्यार्थियों का प्रेशर ग्रुप है, मजदूरों का प्रेशर ग्रुप है, अछूतों का प्रेशर ग्रुप है, इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं जो अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं, जिसमें से रेवोल्यूशन अनफिनिश्ड कहाँ रहा है आज तक, इसको भी समझना चाहिए कि अनफिनिश्ड क्यों रहा, मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन अनफिनिश्ड क्यों रह गया। इसमें मार्क्स का कोई दोष नहीं, वो इसलिए रह गया कि पॉपुलर रेवोल्यूशन नहीं हुआ, प्रेशर ग्रुप्स हुआ। तो इसको बेसिकली अगर मान लेंगे तो बहुत अधिक फिक्र हमको सरकार से लड़ाई करने की नहीं है। ये जो सोशल फोर्सेस हैं जो किसी के फोर्स को नहीं बनने, इनकी तरफ ध्यान जाएगा, वो ध्यान अभी जाता नहीं। नागपुर में सत्ते के लड़के आए मेरे पास, उनसे मैंने कहा कि ये चोर बाजारी करता है आदमी, जिस भाव में बेचना चाहिए उस भाव में नहीं बेचता है, संग्रह करता है। पुलिस वाले के भरोसे यह होगा नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाले को मिला लेता है। काशी में मैं था तो यूपी में